मरकुस अध्याय 5। वे सब झील के उस पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जैसे ही यीशु नाव पर से उतरे, तुरंत भूत की गिरफ्त में बंधा एक आदमी यीशु से मिला, जो कब्रिस्तान से निकलकर आया था। वह कब्रिस्तान में रहा करता था और कोई उसे जंजीरों से बांध कर रखने में भी कामयाब नहीं हुआ था। वह बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा जाता था, लेकिन उन्हें वो टुकड़े टुकड़े कर डालता था। वह किसी के काबू में नहीं आता था। रात दिन वो कब्रों और पहाड़ों पर चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से जख्मी किया करता था। दूर ही से यीशु को देखकर वो दौड़ कर आया और प्रणाम करने के बाद ऊंची आवाज से चिल्लाकर बोला,
ए यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के बेटे, आपसे मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं कसम से आपको कहता हूँ कि मुझे दुख ना दे।
ऐसा वो इसलिए कह रहा था क्योंकि यीशु ने उससे कहा था,
भूत, इस आदमी में से निकल।
यीशु ने पूछा,
तुम्हारा नाम क्या है?
उस आदमी ने कहा,
मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम ढेर सारे हैं।
वह आदमी बहुत गिड़गिड़ाया,
हमें इस देश के बाहर ना भेजे।
वहीं पहाड़ों पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। भूतों ने यीशु से गुजारिश की,
हमें सुअरों के अंदर भेज दे।
यीशु ने वैसा ही किया और भूत निकलकर सुअरों के अंदर घुस गए, जिसकी वजह से तकरीबन 2000 सुअरों का झुंड बहुत तेजी से झील में जा डूब मरा। सुअरों के चरवाहे भाग खड़े हुए और गांव में खबर दी। खबर सुनते ही लोग देखने के लिए वहां आ पहुंचे। जिस आदमी में भूतों की सेना थी, उसे कपड़े पहने और पूरे होशो हवास में देखकर आए हुए लोग डर गए। घटना देखने वालों ने भूत पीड़ित व्यक्ति और सुअरों का पूरा हाल बताया। उन लोगों ने यीशु से विनती की कि वह उनके गांव की सरहद के बाहर चले जाएं। भूतों से आजादी पाया हुआ आदमी यीशु के नाव पर चढ़ते वक्त विनती करने लगा कि यीशु उसे अपने साथ रहने दें, लेकिन यीशु ने उसकी ना सुनते हुए कहा,
अपने घर जाकर अपने लोगों को बताओ कि तुम पर दया करके प्रभु ने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं।
दिकापोलिस में जाकर वह लोगों को बताने लगा कि यीशु ने उसके लिए कितने बड़े काम किए, और लोग सुनकर आश्चर्य से भर गए। यीशु के नाव से दूसरी पार जाते ही एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। वहीं झील के किनारे आराधनालय के प्रधानों में से यायर नामक एक आदमी आया और यीशु के कदमों पर गिर पड़ा। गिड़गिड़ाते हुए उसने यीशु से कहा,
मेरी बेटी मरने पर है, आप आकर उस पर हाथ रखें ताकि वे ठीक होकर जिंदा रहे।
यीशु उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़े। भीड़ इतनी जबरदस्त थी कि लोग एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे। एक महिला को 12 साल से खून बहने की बीमारी थी। डॉक्टरों से उसे बहुत दुख मिला था, क्योंकि उसकी अपनी सारी दौलत इलाज में लगा देने के बावजूद फायदा होने के बजाय और बीमार हो गई थी। यीशु की शोहरत सुनकर भीड़ में यीशु के पीछे से आकर उसने यीशु के कपड़ों को छू लिया। वो माना करती थी,
अगर मैं यीशु के कपड़ों ही को छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी।
उसी वक्त उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में महसूस किया कि उसे बीमारी से मुक्ति मिल गई है। यह महसूस करते ही कि यीशु की देह से शक्ति निकली है, पीछे मुड़कर यीशु ने कहा,
मेरे कपड़ों को किसने छुआ है?
यीशु के शिष्य बोल उठे,
आप भीड़ के दबाव को देख भी रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं आपको किसने छुआ है?
छूने वाले व्यक्ति को देखने के लिए यीशु ने अपनी नजर दौड़ाई, लेकिन जिस महिला को बीमारी से आजादी मिल चुकी थी, डरते और कांपते हुए यीशु के सामने आकर गिर पड़ी और सब कुछ बताया। यीशु ने उससे कहा,
बेटी, तुम्हारे विश्वास के फलस्वरूप तुम स्वस्थ हुई हो।
यीशु उससे बात कर ही रहे थे कि कुछ लोग जो आराधनालय के प्रबंधक के घर से आए थे कहने लगे,
तुम्हारी बेटी मर चुकी है, गुरुजी को अब तकलीफ क्यों दे रहे हो?
जैसे ही यीशु ने लोगों के इन शब्दों को सुना, उन्होंने आराधनालय के प्रबंधक से कहा,
डरने की बात नहीं है, सिर्फ भरोसा रखो।
पत्रस, याकूब और याकूब के भाई यहोन्ना को छोड़कर यीशु ने किसी और को अपने साथ नहीं आने दिया। आराधनालय के प्रबंधक के घर पहुंचने पर यीशु ने वहां शोर शराबे के अलावा लोगों को जोर जोर से रोते हुए पाया। अंदर आते ही यीशु ने उनसे कहा,
ये सब रोना धोना क्यों मचा रखा है? बच्ची मरी नहीं है, वो तो सो रही है।
वहां इकट्ठे लोग यीशु की इस बात पर हंस पड़े, लेकिन जब यीशु ने सभी को बाहर कर दिया, बच्ची के माता पिता और अपने साथियों समेत उस जगह पहुंचे जहां वो लेटी हुई थी। बच्ची का हाथ पकड़ते हुए यीशु ने उसे उठ जाने को कहा। तुरंत वो बेटी उठी और चलने फिरने लगी। वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्य से भर गए। यीशु ने उन्हें सख्ती से कहा कि
इस घटना के बारे में कोई ना जानने पाए, ये भी कि इस लड़की को खाने के लिए कुछ दिया जाए।